नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, आज मैं आप सबका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों रोमियो की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हम इसमें रोमियो की पत्री के अंतिम भाग का अध्ययन कर रहे हैं और मसीही आचरण क्या है उस पर मनन कर रहे हैं, अर्थात हमारी बाहरी व्यक्तित्व, हमारा विश्वास हमारे कार्यों द्वारा प्रकट होना है, अर्थात मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों द्वारा। परंतु हमें ध्यान रखना है कि पौलुस हमें किसी वैधानिक तंत्र के नियमाधीन नहीं कर रहा है। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना है, जैसे कि मानो एक जीवित बलिदान, जिसके लिए आवश्यक है कि हम इस संसार के सदृश न हो। यह तब ही हो सकता है जब हमारी इच्छा पूर्ण रूपेण परमेश्वर की इच्छा से या इच्छा में लीन हो। मेरे मित्रों, पौलुस ने हमें हमारे घमंड के विरुद्ध भी चेतावनी दी है। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को विश्वास का एक परिमाण दिया है और मनुष्यों को अलग अलग वरदान भी दिए हैं, जिनका उपयोग करके हमें कलीसिया का निर्माण करना है। जी हाँ, अब हम देखेंगे कि अन्य विश्वासियों के साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए। आइए हम देखें रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। जी हाँ, प्रेम निष्कपट हो, अर्थात प्रेम झूठा और दिखावे का ना हो। किसी का पीठ थपथपाकर ऐसे वचन ना बोलें जो आपके मन से ना उभरते हो, प्रेम में दिखावा ना हो। मेरे मित्रों, आगे हम देखते हैं, बुराई से घृणा करो। यदि आप कलीसिया में कोई अनुचित बातें देख रहे हैं तो अधिकारियों को सूचित करें। यदि आप निदेशक मंडल के सदस्य हैं तो सच्चाई के लिए खड़े हों। कलीसिया में अनेक सदस्य सच्चाई के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। इसी कारण अनेक रूढ़िवादी कलीसियाएं आज संकट की स्थिति में हैं। हमें सच्चाई पर अटल रहने वाले स्त्री और पुरुषों की आवश्यकता है। भलाई में लगे रहो। यहाँ लगे रहो के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है दृढ़ता से जुड़े रहो। विश्वासी की पहचान भलाई से होती है, संदेहात्मक एवं प्रश्नवाचक अभ्यासों से नहीं। हम रोमियो के पत्र 12 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे मित्रों, यहाँ पर कैसी अद्भुत बातें हमें बताई गई है। सम्मान की संहिता परमेश्वर की आत्मा की आभा से पूर्ण है। उत्साह में कम ना हो, परमेश्वर की बातों के लिए उत्साह से पूर्ण रहे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, अर्थात परस्पर पारिवारिक प्रेम रखो। फरार ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है, विश्वास के भाइयों से ऐसा प्रेम रखो जैसे कि वे खून के रिश्ते में भाई हैं। उदाहरण के रूप में, तीन पुरुष एक साथ बैठे हैं, उनमें से दो जुड़वा भाई हैं। एक जुड़वा भाई विश्वासी है, दूसरा अविश्वासी। इनके साथ बैठा तीसरा भाई एक अफ्रीका वासी है। उसकी संस्कृति, पृष्ठभूमि और भाषा आदि सब अलग है। उसका वर्ग भी अलग है, परंतु वह प्रभु को अपना उद्धार करता मानता है। अब वह विश्वासी जुड़वा अपने भाई से अधिक उस अफ्रीका वासी से प्रेम रखता है। मेरे मित्रों, आपको अपने सह विश्वासी के साथ अधिक स्नेह संबंध रखने हैं, क्योंकि आप उसके साथ अनंत जीवन बिताएंगे। आप इस विशेष विधि का अभ्यास आरंभ कर दें और इसे स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। मेरे मित्रों, आप और आपका सहविश्वासी अनंत जीवन में नई देह में होंगे और पुराने स्वभाव से मुक्त हो चुके होंगे। आप दोनों के लिए ही यह अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों एक साथ रहेंगे। आगे लिखा है, प्रयत्न में आलसी ना हो, अर्थात उत्साह में कमी ना आने दो। लूथर ने यही बात अपने शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत की है, उत्साह के संबंध में आलस न करो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो या आत्मा से आभयमान बने रहो। जी हाँ, इसका अभिप्राय है कि हमारा जोश और उत्साह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे। तब देखते हैं, प्रभु की सेवा करते रहो। मसीही आचरण के प्रत्येक व्यवहार को केंद्र बिंदु की ओर इंगित करता है, अर्थात उसकी सेवा करते रहो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 12 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। मेरे मित्रों, आशा में आनंदित रहो, यह विश्वासी का एक भाग है। विश्वासी की परिस्थितियां आनंद मनाने की अनुमति न दे, इसका विपरीत भी सच हो सकता है। परंतु विश्वासी भविष्य को देखता है और आशा रखकर स्वयं को अधिक अनुकूल स्थितियों में लाता है। मुझे अपने सेवा के समय में एक भाई का स्मरण आता है, जो आराधना के समय में उच्चारित किए जाने वाले बाइबल के पदों के अभ्यास के समय खड़े होकर के बोला कि उसका यह मन भावन पद है। ऐसा हुआ। यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट होने लगा। मेरे मित्रों, प्रचारक ने खड़े होकर उससे कहा, मेरे भाई, यह पद आपका मन भावन पद कैसे हो सकता है? उसका उत्तर था, जब मैं समस्याओं और परेशानियों में होता हूं, तब मैं इस पद को पढ़ना पसंद करता हूं और मैं समझ जाता हूं कि वे जाने के लिए हैं, रुकने के लिए नहीं। वह एक नए दिन की प्रतीक्षा करता है। पौलुस के मन में भी यही बात है, जब उसने लिखा, आशा में आनंदित रहो। मेरे मित्रों, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, अर्थात प्रार्थनाशील स्त्री और पुरुष बनो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, अर्थात आवश्यकता ग्रस्त विश्वासियों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। बहुत से कलीसियां ऐसी हैं कि गरीबों की सहायता के कोष के विषय में बड़ी बड़ी बातें करती हैं, परंतु वे कितना पैसा सहायता में लगाती हैं ये वे ही जानते हैं। परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि उसने हमें जो आशीषें दी है उन्हें आवश्यकता ग्रस्त विश्वासियों में हम बांट दें। और आगे कहता है, पहुनाई करने में लगे रहो, अर्थात अतिथियों की सेवा की खोज में रहो। हमें अन्य विश्वासियों की खोज करके उनकी सेवा करना है। आपके पड़ोस में या आपके कलीसिया में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंतर्मुखी हो और सबसे अलगाव रखता है, परंतु सहभागिता के लिए तरसता है। मेरे प्रियो, हमें उसे खोजकर उसे सहभागिता प्रदान करना आवश्यक है, उसके साथ संगति देना है। आगे है, अपने सताने वालों को आशीष दो। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वासियों के लिए यह एक अनावश्यक आदेश है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कभी नहीं सताएगा, क्या वह ऐसा करेगा? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग करते हो। कोई आपको लात मारे तो उसे आशीर्वाद देना असंभव है, परंतु हमें आशीर्वाद देने के लिए कहा गया है, श्राप देने के लिए नहीं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। संसार का सिद्धांत है, हंसोगे तो संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, रोगे तो अकेले रोना पड़ेगा, परंतु विश्वासी के साथ ऐसा नहीं है। हमें विश्वासी के सुख दुख का भागी होना है और विलाप करने वालों के साथ हमें भी विलाप करना है। मेरे मित्रों, यहां लिखा है कि आपस में एक सा मन रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि एक से विचार रखो, परंतु यह कि हम में मसीह का मन हो। विश्वासियों को एक दूसरे के जीवन में भावनात्मक रूप से सहभागी होना है। मेरे विचार में यही एक गुण सच्चे विश्वासी को माननीय बनाता है। अभिमानी ना हो, परंतु दोनों के साथ संगति रखो। मेरे मित्रों, हम दीन मनुष्यों और निम्न स्तरीय बातों से न डरें। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव कैसे था? अति दीन स्वभाव था। आगे है, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अर्थात दूसरे शब्दों में अपनी समझ में बुद्धिमान ना हो। कैसा आदेश है यह! बहुत से पवित्र जन अपने आप को आत्मिकता में महान समझते हैं, जबकि वे हैं नहीं। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, उसने एक अति रोचक बात कही नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय के 12 पद में, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। जी हाँ, मैं तो ऐसा कहने का साहस नहीं करूंगा, परंतु सुलेमान ने कहा है। अब हम आगे देखेंगे, अविश्वासियों के साथ संबंध। आप और मैं अविश्वासियों के संसार में रहते हैं, अर्थात निवास करते हैं। हमारा संबंध उनके साथ कैसे होना चाहिए? रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जी हाँ, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में विश्वासी को बुराई ही मिलेगी, तथापि हमें बदला नहीं लेना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। एक अनिष्ट विश्वासी से बढ़कर मसीह के प्रयोजन को हानि पहुंचाने वाली बात और कोई नहीं है। अविश्वासी आपकी मान्यता के प्रति चिंतित नहीं रहता है, चाहे आपकी मान्यता हो या ना हो, आप पूर्व नियति चुनाव मानते हैं या आप स्वतंत्र इच्छा में विश्वास रखते हैं। वह तो यह भी जानना नहीं चाहता कि आप सत्यवादी हैं या नहीं, वह यह भी जानना चाहता है कि आपने अपने ऋण ईमानदारी से चुकाए हैं या नहीं। क्या आप ऐसे मनुष्य हैं जो जिस पर मनुष्य विश्वास कर सकता है? सब लोगों के निकट भली बातों की चिंता करना ट्रैक्ट बांटने से या पर्चे बांटने से अधिक उत्तम है। मेरे मित्रों, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक विश्वासी ने किसी को एक पर्चा दिया। उसने पूछा, यह क्या है? उस विश्वासी ने कहा, यह एक पुस्तिका है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। उस मनुष्य ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता, परंतु मैं जो कर सकता हूँ वह यह है कि आपके मार्गों को देखूं। वह कैसा सही था। जी हाँ, संसार आपके मार्गों को देख रहा है कि आपके पांव कहाँ जाते हैं, आपके द्वारा दिए गए पर्चे को नहीं। मुझे आप गलत न समझें, पर्चा बांटना महत्वपूर्ण है, परंतु आपका जीवन ऐसा हो कि उसका अनुमोदन कर सकें, लोग उस पर चल सकें। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मुझे यह बात अति प्रिय जान पड़ती है, क्योंकि आप कुछ मनुष्यों के साथ मेल कर ही नहीं पाते हैं, वे आपको मेल करने ही नहीं देते हैं। एक एकांतवासी प्रिय महिला ने मुझे बुलाया और अपने पड़ोसी के साथ परामर्श हेतु मुझे कहा, क्योंकि उसके साथ मेल करना उसके लिए असंभव था। उसके पास जाते समय मैं मार्ग में सोच रहा था कि वह महिला विश्वासी तो थी, परंतु अकेले रहती थी, अतः अति संभव है या था कि वह स्वयं ही कठिन व्यक्ति हो गई है। अंत में मैं उसके पड़ोसी के पास गया और उससे वार्तालाप आरंभ किया। उसकी पड़ोसन ने स्पष्ट किया कि वह मेरे बारे में और उस महिला के बारे में क्या सोचती थी। मैं उस अद्भुत विश्वासी स्त्री के पास लौट आया और कहा, यदि आप उसके साथ मेल नहीं कर पाती तो चिंता न करें, उस स्त्री के साथ कोई भी मेल नहीं कर पाएगा। बाइबल में लिखा है, भरसक प्रयास। बाइबल नहीं कहती है कि आपको मेल करना ही होगा, आप यथासंभव प्रयास कीजिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के महान उद्देश्यों में से एक यह भी है, परंतु परमेश्वर की संतान के लिए ऐसा करना सर्वाधिक कठिन कार्य है। यदि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर देना, जी हाँ, ये बहुत कठिन है। मेरे विचार से उस व्यक्ति से सहमत है जिसे किसी ने एक गाल पर थप्पड़ मारा और उसने दूसरा गाल उसकी ओर कर दिया। इस बार उसने उसे ऐसा मारा कि वह गिर गया। अब उस व्यक्ति ने उठकर उसे भी घूंसा मारा। किसी ने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका उत्तर था, बाइबल में लिखा है कि दूसरा गाल भी फेर दे, मेरे पास दो ही गाल हैं, प्रभु ने नहीं कहा कि इसके बाद क्या करूं, तो मैंने जो उचित समझा वही किया। मेरे मित्रों, हम अधिकतर ऐसा ही करते हैं, हम पलट कर वार करने से नहीं चूकते, हमारे लिए यह कठिन है। हम जब ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के काम को अपने हाथ में ले लेते हैं और हम विश्वास के मार्ग से हट जाते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरे साथ विश्वास पे चल और तेरी समस्या को मेरे लिए छोड़ दे, क्योंकि मैं जो करूंगा वह न्याय के अधीन होगा। यदि इस व्यक्ति ने तुझे हानि पहुंचाई है तो मैं उसे देख लूंगा। मेरे मित्रों, आप और मैं प्रभु के हाथ में अपना बदला लेना छोड़ दें, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं आपसे तो कह सकता हूं कि क्या करना चाहिए, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा करना मेरे लिए भी बहुत कठिन है। परंतु एक या दो बार मैंने अपना बदला परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया था और उसने जो किया वह ऐसा उचित बदला था कि मैं विस्मित रह गया। जी हाँ, वह मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह बदला लेता है। मेरे मित्रों, मेरी एक कलीसिया में एक पदाधिकारी से बात हुई जिसने मुझे बहुत हानि पहुंचाई, भयंकर हानि पहुंचाई। मेरे मन में तो आया कि उसका सिर फोड़ दूं, परंतु मुझे तुरंत ही यह पद स्मरण आया। मैंने तत्काल ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं बदला लेना नहीं चाहता, आप मेरी सहायता करें, और मैं वहां से चला गया। अगले दिन जब मैंने उसे देखा तो वह संसार का सबसे दुखी मनुष्य प्रतीत होता था। मेरे मित्रों, वह समस्याओं से घिरा हुआ था। प्रभु की भारी मार उसे पड़ी, उसे देख मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चाहता तो हूँ कि प्रभु के हाथ में दे दूं, परंतु मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मैं बदला लेता हूँ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। दूसरे शब्दों में बुराई के अधीन ना हो जाओ परंतु बुराई पर भलाई से जय पाओ। विश्वासी इस संसार में शैतानी तंत्र में रहता है, वह उससे लड़ नहीं सकता। मेरे मित्रों, यदि आप इस शैतानी संसार से लड़ेंगे तो वह आपको कोड़े मारेगा। आप सांसारिक नीति, घृणा और बदले के भाव पर रहेंगे पर नहीं चल सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका हार जाना निश्चित है। भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर ने विश्वासियों को भलाई अर्थात पवित्र आत्मा दिया है, उसे पवित्र आत्मा के साथ चलना है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आगे पौलुस यह भी कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इसे हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 13 में प्रवेश करेंगे और आज सिर्फ हम इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे। इसका विषय होगा सरकार के साथ संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध। मित्रों, अध्याय 13 में भी हम परमेश्वर के पुत्रों की सेवा की चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि विश्वासी की नागरिकता स्वर्ग में है परंतु वह इस संसार का भी नागरिक है। इस प्रकार उसके 2 उत्तरदायित्व हैं। यदि इन 2 में विषमता उत्पन्न हो तो हमारा पहला उत्तरदायित्व हमारे स्वर्ग में उपस्थित प्रभु के प्रति है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है कि मानवीय सरकार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। आपको स्मरण होगा कि उसके बैरियों ने उससे पूछा था कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। इसे हम लुका रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 25 पद में देखते हैं। उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, अर्थात जो राजा का है उसे राजा को दो, जो सरकार का है उसे सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। सरकारें परमेश्वर द्वारा स्थापित की जाती हैं। परमेश्वर ही उन्हें अधिकार संपन्न करता है। मानवीय सरकार स्थापित करते समय आरंभ ही में उसने कहा था, जिसे हम उत्पत्ति के पुस्तक 9 अध्याय और उसके 6 पद में पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। जी हाँ, परमेश्वर मनुष्य के जीवन का मान रखता है। मनुष्य का जीवन उसके दृष्टि में बहुमूल्य है। आपको मनुष्य की जान लेने का अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उसके बदले में अपना जीवन देना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हमारे आज के इस संसार के विचार अलग हैं। वह अपराधी को हीरो और ईमानदार व्यक्ति को खलनायक बना देता है। हमारे इस युग में बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहा जाता है। तथापि सरकार के प्रति विश्वासियों का एक उत्तरदायित्व है। पौलुस युवा प्रचारक तीमुथी से कहता है, 1 तीमुथियुस उसकी पत्री 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद में, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। कहने का अर्थ यह है कि हमें अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। यह उत्तरदायित्व हम रविवारीय आराधना में पादरी पर छोड़ देते हैं। मेरे मित्रों, स्वर्गिक नागरिक होने के नाते विश्वासी पर आत्मिक उत्तरदायित्व है। किसी सरकार का नागरिक होने के नाते विश्वासी पर सांसारिक उत्तरदायित्व भी है। ये दोनों उत्तरदायित्व अलग अलग हैं और इनको संयोजित करने का अर्थ है कलीसिया और सरकार को अलग एवं भिन्न रखने से चूक जाना। मेरे मित्रों, पौलुस के युग में यहूदी घमंडी रोमी सरकार के सामने झुकना स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए यहूदियों ने रोम नगर में अव्यवस्था उत्पन्न की थी और परिणाम स्वरूप एक बार तो राजा क्लॉडियस ने उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया था। इसराइल में घमंडी फरीसियों ने रोमी सरकार का त्याग करके इसराइल की सरकार स्थापित करने की कामना की थी। यही थे जिन्होंने यीशु को फंसाने की भी चाल चली थी और पूछा था कि राजा को कर देना उचित है या नहीं। अतः आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिप्राय विद्रोह के विस्फोट से है। यह स्मरण रखना चाहिए और उचित होगा कि पौलुस के युग में अधिकारी क्रोधी और हत्यारे थे। नीरो रोमी सिंहासन पर बैठा था और पिलातुस तथा हेरोदेस आदि सब धूर्त ही थे। तथापि पौलुस कहता है कि विश्वासी अधिकारियों का पालन करें, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन न करें और उनके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, यह मन केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। जब आपका जीवन बदल जाएगा तब ही आप ऐसा कर पाएंगे, अन्यथा आप सिर्फ बुराई से भलाई को कभी भी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और कहें कि प्रभु, मैं सरकार का आदर करना चाहता हूँ, मैं आपका आदर करना चाहता हूँ, मैं आपके वचनों के अनुसार चलना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सारे विशेष और अद्भुत बातों को सीखा है। क्यों ना आज हम सब निर्णय लें और उसके अनुसार चलने का मन बनाएं, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष हो। मैं नहीं जानता कि आपने कितनों को क्षमा किया है या नहीं। हो सकता है कुछ आपके शत्रु हैं, लेकिन वचन कहता है कि हम उसे क्षमा करें, हम उसे मेल मिलाप करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो आइए आज हम इसी संकल्प के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हे प्रभु यीशु।